पृष्ठ संख्या 5 प्रस्तावना। भारत के मानसरोवर में भाषाओं, विचारधाराओं, भौगोलिक क्षेत्रों और विविध प्रकार की असमानताओं के नीचे एकता, समन्वय तथा राष्ट्रीयता की जो लहरें दौड़ रही हैं वह प्रायः आँखों से ओझल रह जाती हैं, क्योंकि हम भाषाओं की विभिन्नताएं तो देख लेते हैं परंतु साहित्यिक समानताओं की आधार भूमि पर विचार नहीं करते। आज जबकि राष्ट्रीय एकता की खोज की जा रही है, भाषा विज्ञान और लोक गाथाओं का अध्ययन किया जा रहा है, इतिहास को सामान्य जनजीवन के संदर्भ में पढ़ने की कोशिश की जा रही है और उन भावनाओं के प्रोत्साहन पर बल दिया जा रहा है जो संयोजन के आधार को विस्तृत करती हैं, वर्तमान स्थिति में इसकी आवश्यकता बढ़ गई है कि हम विभिन्न भाषाओं के साहित्य, उनके विकास, उनकी परंपराओं और उनकी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करके अलगाव और अंतर की भावनाओं को दूर करें जिन्हें पिछली शताब्दियों में निहित स्वार्थी और कूट राजनीतिक गतिविधियों ने जन्म दिया है। ऐतिहासिक परिस्थितियों ने हमें दूरवर्ती देशों के साहित्य अध्ययन के लिए तो उकसाया, किंतु स्वयं अपने ही देश के साहित्यिक वांग्मय से हम अनभिज्ञ रहे। आज इतिहास की गति बदल रही है, इसलिए प्रत्येक भाषाभाषी अन्य भारतीय भाषाओं का इतिहास भी पढ़ना चाहता है। यही अभिलाषा थी जिसने उर्दू साहित्य का यह इतिहास मुझसे हिंदी में लिखवाया। उर्दू मध्यकालीन भारत की सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली वह भाषा है जिसे थोड़े ही समय में ऐतिहासिक कारणों से देश के बहुत से भाग में फैल जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसकी यह विशेषता विचारणीय है कि उसकी भारतीय आधार भूमि पर जो महल तामीर हुआ उसमें अरबी और ईरानी गुलबूटे भी थे और दिल्ली, आगरा और अवध की बोलियों का रस भी। इसलिए उसके साहित्य में उदारता तथा विभिन्न सभ्यताओं का समन्वय प्रारंभ से ही मिलने लगता है जो आगे की शताब्दियों में बढ़ता ही जाता है। इस कारणवश उर्दू साहित्य के इतिहास का अध्ययन सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। साहित्य इतिहास के संबंध में मेरे कुछ विशेष विचार हैं। यह ना तो नामों, घटनाओं और तिथियों की खतियोनी हो सकता है और ना अप्राप्य शोध उपलब्धियों का संकलन और ना आलोचनात्मक लेखों का संग्रह। इन सब का अपना अपना महत्व है। पृष्ठ संख्या 6। परंतु साहित्य इतिहास का रूप इन सब से भिन्न होना चाहिए। काल, समय, गति की सीमाओं के भीतर होने वाली घटनाओं की जो श्रृंखला बनती है उसे इतिहास कहते हैं। उसका केंद्र बिंदु मानव है जो सामाजिक वातावरण से बनता भी रहता है और उसको परिवर्तित भी करता है। साहित्य रचना उसकी जीवन कृति का अंग है, इसीलिए उसको सामाजिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ना सामाजिक दृष्टि प्रदान करेगा। जब तक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझा जाएगा कि साहित्य राष्ट्रीय सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक परंपरा और ऐतिहासिक उन्नति अनुन्नति का प्रतिबिंब होता है और उसकी भावनात्मक एवं मानसिक आकांक्षाओं का रचना विधान प्रस्तुत करता है, उस समय तक साहित्य इतिहास बदलते हुए साहित्यिक दृष्टिकोण का प्रामाणिक उल्लेख नहीं कर सकता। साहित्य समाज का जीवित अंग होता है, उसका ऐतिहासिक विश्लेषण इसी ढंग से होना चाहिए। जिस इतिहास से यह स्पष्ट ना हो सके कि साहित्य चिंतन में एक युग से दूसरे युग में किस प्रकार अंतर उत्पन्न हो जाता है, एक शैली की लोकप्रियता दूसरे युग में क्यों कम हो जाती है और एक रूप विधान दूसरे के लिए अस्वीकार क्यों हो जाता है, वह इतिहास कुछ साहित्यिक जानकारी प्राप्त करने का माध्यम तो बन सकता है परंतु संतोषजनक साहित्यिक चेतना और संवेदना नहीं पैदा कर सकता। उर्दू साहित्य के अब तक जो इतिहास लिखे गए हैं उनमें यह कमी रही है कि लेखकों ने सामाजिक चेतना और ऐतिहासिक अविच्छिन्नता को अपनी दृष्टि में नहीं रखा। कुछ भाषा संबंधी विभिन्नताओं और शैलियों के भेदभाव को सामने रखकर काल विभाजन कर दिया है जिससे पूरे इतिहास के विकास और उसकी अन्य विधाओं की गति का ठीक से ज्ञान नहीं होता। मैंने इस छोटी सी पुस्तक की सीमाओं के भीतर इसकी चेष्टा की है कि उर्दू साहित्य की जो रूपरेखा दी जाए वह इसका सही साफ परिचय दे सके कि वह कौन सी ऐतिहासिक परिस्थितियां थी जिनमें साहित्य विकास का परिवर्तन का क्रम जारी रहा। यह कह देना आवश्यक है कि प्रस्तुत मेरी पहली रचना उर्दू साहित्य का इतिहास पर आधारित है, जो कई वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी और जिसका रूसी अनुवाद भी हो चुका है, किंतु अपने परिवर्तित रूप में यह नई पुस्तक बन गई है। इस संबंध में अपने प्रिय शिष्य डॉक्टर जाफर रजा का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने बड़े प्रेम से इसकी तैयारी में अनेक प्रकार से मुझे योग दिया। उर्दू विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एहतेसाम हुसैन। पृष्ठ संख्या 7। प्रस्तुत पुस्तक की सर्वप्रियता से मुझे संतोष है, जिसमें पुनः प्रकाशन से अधिक इस अनुभव से प्रसन्नता होती है कि मेरी इस पुस्तक से उर्दू साहित्य के इतिहास के अध्ययन में समुचित जानकारी का साधन मानी जाती है। यदि कुछ एक व्यक्तिगत कारणों से असमर्थ न होता तो इसमें उचित संशोधन परिवर्धन करता। फिर भी कुछ स्थानों पर नए तथ्य सम्मिलित कर दिए गए हैं। आगामी संस्करण में शेष त्रुटियां भी निकालने का यत्न करूंगा। आशा है कि आप इस संस्करण का भी स्वागत करेंगे। उर्दू विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1908-1972। एहतेशाम हुसैन।